نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبق نمبر 282 سورة شمس اور سورة لیل پہلے سورة شمس کو دیکھیں گے سورة شمس ترتیب کے اعتبار سے 91 یعنی 91 نمبر کی سورہ ہے ایک رکوع ہے 15 آیات ہے سورت کا نام پہلے ہی لفظ وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا سے ہے مکی سورت ہے کئی قسمیں کھانے کے بعد انسان کو جو یقین دلایا گیا وہ کیا ہے کہ اللہ کی ذات نے تمہیں جتنی بھی نعمتیں دی ہیں ان کے پیچھے کوئی مقصد ہے کائنات کا نظام بے مقصد نہیں بے کار نہیں سورج جس طرح چمکتا ہے اور دوسروں کو فائدہ دیتا ہے کتنی چیزیں اس کے دم سے ہیں یہی پیغام انسان کے لیے ہے سات چیزوں کی قسمیں کھا کے اس کائنات کے اندر پھیلے ہوئے نظام کو واضح کیا گیا اور اخیر میں نتیجہ اس سے بھی وہی نکالا گیا کہ جو لوگ نبیوں کی دعوت کو نہیں مانتے ان کے دشمن ہو جاتے ہیں خاص طور پہ قوم سمود کے ساتھ جو معاملہ ہوا حضرت صالح کی قوم کا اس کا تھوڑا سا اس میں اشارہ دے کے بتایا گیا کہ جو قومیں سرکشی کی روش اختیار کرتی ہیں پھر ان کو فائدہ نہیں ہوتا اور در پردہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنے والوں کو بتایا جا رہا تھا کہ دیکھو کل جن نبیوں کی مخالفت کی گئی تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ کیسا معاملہ کیا اور سورت کے اندر جو آپ کو مین تھیم دکھے گا وہ نیکی اور بدی کا فرق برے اور بھلے انجام سے بچانے کے دو راستے ہیں سورت دو حصوں میں مبنی ہے پہلا حصہ سورت کے آغاز سے آیت 10 تک ہے اور دوسرا 11 سے آخر سورت تک ہے پہلے حصے میں تین باتیں سمجھائیں گے کیونکہ اب یہ وہ صورتیں آ گئی ہیں کہ اگر آپ ان کا تھیم سمجھ جائیں گے تو باقی باتیں تو پھر ہلکی پھلکی سی ہوتی ہیں پہلی بات جو شروع کے حصے میں وہ کیا ہے کہ جس طرح سورج اور چاند دن اور رات زمین آسمان ایک دوسرے سے مختلف اور اپنے آثار اور نتائج کے اعتبار سے متضاد ہے نا جیسے رات سے صبح فرق ہوتی ہے سورج سے چاند فرق ہوتا ہے اسی طرح نیکی اور بدی بھی ایک دوسرے سے مختلف ہیں اور ان کے نتائج مختلف نکلیں گے بہت بڑی بات ہے کہ یہ چیزیں دنیا میں اگر نیکی کی زندگی بسر کرو گے ڈیفینیٹلی اس کا نتیجہ مختلف ہوگا گناہ کی زندگی بسر کرنے کے نتیجے سے یہ دونوں چیزیں دنیا میں جیسے ہیں ویسے آخرت میں ہوگی دوسرا سبق کیا دیا گیا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کے نفس کو جسم اور حواس اور قوتیں دے کر بے خبر نہیں چھوڑا بلکہ ایک الہام ڈالا ہوا ہے اس کے اندر جو اس کو نیکی اور بدی کا فرق بتانے میں مددگار ہوتا ہے یہ وہی بات ہے جو صورت قیامت میں ہم کچھ کر سکے نفس لوامہ کے موضوع پہ خیر اور شر کا احساس کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے پتہ ہی نہیں چلا اللہ کیا چاہتا تھا تیسری بات جو ہم پہلے حصے میں پڑھیں گے وہ کیا ہے کہ انسان کے مستقبل کا انحصار اس پر ہے کہ اس کے اندر تمیز ارادے اور فیصلے کی جو قوتیں اللہ نے اس کو دی ہیں ان کو استعمال کر کے اپنے نفس کے اچھے برے رجحانات میں جس کو ابھارے گا اسی کے مطابق اس کا فیصلہ ہوگا تو یہاں نفس کے تزکیے کی بات بھی ہوگی اس کے بعد سورت کا دوسرا اور آخری حصہ شروع ہوتا ہے قوم سمود کی تاریخی حیثیت کو بیان کر کے رسول کی مخالفت کا انجام بتایا گیا کہ جو رسول بات کہتے ہیں اصل میں وہی ہوتی ہے جو انسان کی فطرت اس کو بتا رہی ہوتی ہے نبی تو صرف اس کے ایک ریمائنڈر کے طور پر ہوتے ہیں تو گویا کہ جو رسولوں کا انکار کرتے ہیں وہ اپنی فطرت کا بھی انکار کرتے ہیں اور ایسی باتیں کر کر آ کے وہ خود کو خود آگ کا ایندھن بناتے ہیں تو صورت دیکھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم والشمس وضحاها قسم ہے آفتاب کی اور اس کی دھوپ کی والقمر اذا تلاها اور قسم ہے مہتاب کی جب وہ غروب آفتاب کے بعد آئے طلوع ہو تیسری قسم والنہار اذا جلاها اور قسم ہے دن کی جب کہ وہ آفتاب کو روشن کر دے اگلی قسم واللیل اذا یغشاها اور رات کی جب کہ وہ اس کو چھا لے رات آتی ہے تو ہر چیز کے اوپر چھا جاتی ہے اور کس کی قسم ہے والسماء وما بناها اور قسم ہے آسمان کی اور اس کو بنانے والے کی یعنی جس ذات نے اس کو قائم کیا ہوا ہے جس نے اس کو بنایا ہوا ہے اور کس چیز کی قسم ہے ولر دیوما تحاہا और जमीन की और इसको बिछाने वाले की कसम, अल्लाह अपनी कसमें खा रहा है। फिर उसके बाद किसकी कसम है, व नफ्स व मा सवाहा, और कसम है इंसान की और इसको दुरुस्त करने वाले की। यहाँ पे सात चीज़ों की कसमें पूरी होती हैं। पहली कसम व शम्सी व दुहाहा, लफ्ज़ दोहा आया, सूरज की रोशनी और इसकी हरारत दोनों के लिए ये लफ्ज़ आता है, यानी रोशनी और गर्मी। अरबी ज़बान में इससे चाश्त का वक्त मुराद होता है, सूरज तुलू होने के बाद जब बिल्कुल सूरज खुल के ऊपर आ जाता है, इसी से सलातु दोहा भी है। मुराद ये कि सूरज की चमक की और सूरज की गर्मी की कसम। फिर उसके बाद चांद की बात हुई, रात की आमद पर सूरज तो छुप जाता है और रात भर रोशनी गायब रहती है, तो इस पे अल्लाह ताला ने कहा कि रात सूरज को ढांक लेती है, क्योंकि रात की असल हकीकत सूरज का पीछे होना है। ये ग्लोब बिल्कुल एक ही सादा मोती है, जब सूरज सामने आता है तो चमक जाता है, सूरज पीछे जाता है तो अंधेरा हो जाता है। अल्लाह ताला कैसी साइंस पढ़ाता है। आज जो चीज़ें बड़े बड़े साइंसदान खोलते हैं कुरान पाक में, वो कब से बयान की हुई हैं, हम समझ नहीं पाते उसको। फिर इसके बाद आप देखिए कि अल्लाह ताला ने आसमानों की कसम खाई, जब उसको बनाया बनाने वाला, ज़मीन तहा खा सवा खा, एक एक सिफत को देखें तो ऐसे लगता है कि अल्लाह ताला अपने शाहकार दिखा कर बताता है, मुझे सूरज की कसम, मुझे चांद की कसम, मुझे सितारों की कसम, मुझे इसके बिछाने की कसम। इतनी कसमें खा के इंसान आखिर में ले आता है वह नफ्स व मा सवा, नफ्स की कसम और इसको दुरुस्त करने वाले की कसम। जहाँ इंसान के नफ्स की कैफियत बता दी अगली आयत में, क्या किया इस नफ्स के साथ, फअल्हमहा फुजूरहा व तक्वाहा, फिर इसके दिल में डाल दिए इसकी नाफरमानी और इसकी पारसाई को। हर नफ्स को पैदा करने के बाद ऐसे ही नहीं छोड़ दिया, जैसे सूरज चांद सितारों को बनाने पैदा करने के बाद ऐसे ही नहीं छोड़ दिया, बल्कि इसके ऊपर एक टोक लगा दी। लफ्ज़ है इल्हाम अल्हमहा में और लफ्ज़ है फजरा लफ्ज़ फजूर में। इल्हाम का मानी होता है दिल में बात डालना, फजूर के मानी होते हैं खुले गुनाह करना, और आगे लफ्ज़ है वह तकवाहा, तकवा का मानी तो हम पीछे कई पढ़ चुके। क्या बताया पिछली आयत से साथ जोड़े व नफ्स व मा सवाहा से, तो पता क्या चला कि नफ्स के अंदर दोनों सलाहियतें मौजूद हैं, नेकी का इल्हाम भी है और फजूर और बेदीनी या बददियानती के जज्बात भी मौजूद हैं। हर इंसान के अंदर ये दोनों मुहर्रिकात मौजूद हैं, चाहे तो नेकी करे चाहे तो गुनाह करे, करना चाहो तो अच्छा कर लो, ना करना चाहो तो बुरा करो। अजान की आवाज़ आई, चाहो तो उठ के नमाज पढ़ लो, चाहो तो अलार्म बंद करके फिर सो जाओ। सब के अंदर फअल्हमहा फुजूरहा व तक्वाहा, लेकिन बचेगा कौन, قد افلح من زكاها, यकीनन फलाह पा गया वो शख्स जिसने अपने नफ्स का तज़किया कर लिया, जिसने अपने आप को पीस के रख दिया, हमवार कर दिया। अल्लाह ने उसको इतना कुछ दिया, उन सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से इस्तेमाल करते हुए अपनी फितरत को भरने पे काबिल हो गया, जैसे फितरतुल्लाहि अल्लती फतरन्नास अलैहा, सूरत रोम की आयत 30 में हम पढ़ चुके। कायम हो जाओ उस फितरत पे जिस पे अल्लाह ने तुमको पैदा किया। तो एक इंसान जब दुनिया में आता है वो पूरे जीन्स लेकर आता है नेकी करने के। बाद लोग कहते हैं ना, मेरी तो वो जीन्स में ही नहीं है कि मैं नेकी करूं, मेरी तो फितरत ही ख़राब है। बस लोग बल्कि माएँ बच्चों को कहती है, इसकी तो फितरत ही बुरी है, ये तो शुरू से ही ऐसा है। मत कहिए, फितरत किसी की बुरी नहीं होती, फितरत सबका अच्छा होता है, लेकिन इसके साथ किस तरह से मामला किया जाता है, जिस तरह से हम करवाना चाहते हैं। अगर हम लफ्ज़ अल्हाम को थोड़ा सा मज़ीद खोल के देखें तो इसमें एक बहुत बड़ी हकीकत खुलेगी, और वो क्या कि इल्हाम का लफ्ज़ ये लहम से है, लाम हा मीम, इसका लफ्ज़ी मानना होता है निगलना, थूक निगलते हैं, कोई चीज़ मुंह में जाती है तो उसको निगलते हैं ना। अरब लोग कहा करते हैं लहम शैया वल तहमहु, फलां शख्स ने उस चीज़ को निगल लिया। इसी तरह कहते हैं अलहमतुहु शैया, मैंने फलां चीज़ उसको निगलवा दी या उसके हलक से उतार दी। बस इसी लफ्ज़ को अगर आप सामने रख रहे हैं तो इल्हाम के लफ्ज़ से लाशौरी तौर पर, गैर शौरी तौर पर बंदे के दिल में किसी चीज़ के डालने का मन ही आता है। जैसे दिल धड़कता है, हम में से कोई उसको बार बार कहता नहीं कि धड़को, आंख देखती है, हम में से कोई कहता नहीं देखो, इसी तरह हमारे नफ्स में इल्हाम बगैर इरादों के आते रहते हैं। नेकी का इरादा आता है हर इंसान के, आता है किसी मजहब का बंदा हो, किसी दीन का बंदा हो, उसके दिल में ये ख्याल ज़रूर आता है कि मैं नेकी करूं। हमारे खून में, हमारी रगो रेशों में गुंदी हुई है ये अर्ज कि हम नेकी करें, लेकिन साथ ही नफ्स गालिब आता है, नफ्स अमारा की सूरत में तो इंसान फजूर की तरफ चल पड़ता है। दो किस्म की जंगें हमारे इर्द गिर्द हो रही हैं, एक हमारे अंदर, एक बाहर। अंदर की जंग यही है फजूर और तकवा की। हय अल सला की आवाज़ आई, ज़मीर कहता उठो नमाज पढ़ो, नफ्स हमारा कहता अभी सो जाओ रात बड़ी लंबी है। जिसकी मान जाएंगे वो जीत जाएगा, उठ के पढ़ लेंगे तो ज़मीर जिंदा हो जाएगा, फिर रोज़ उठाएगा, फिर जोहर से पहले कहेगा उठो अब नमाज का वक्त फिर आ रहा है। इस तरह एक नमाज के बाद दूसरी नमाज ठीक होती जाएगी, जैसे वो एक बकरी को छड़ी लगा दे पूरी लाइन ठीक हो जाती है। इस तरह पहली नमाज फजर की बांध लें, वक्त पे पढ़ें, पांचों नमाजें बिल्कुल सीध पे, वक्त पे, सही डिस्टेंस पे आ जाएंगी। इसके बरक्स अगर पहली ही बात छोड़ दी, सो जाओ अभी कुछ नहीं होता, तो फजूर गालिब आ जाता है। अब ये दो मुहरकात जो हम सब के अंदर मौजूद है ना, मोमिन के अंदर भी है, काफिर के भी है, फाजिर के है। जब माँ के पेट से बच्चा आता है वो सब एक ही होता है, हर बच्चा मुस्कुराएगा, अल्लाह की बात करेंगे, खुश होगा। वो हदीस बार बार हम सुन चुके कि हर बच्चा बोध मुस्लिम है, बाद में उसके माँ बाप उसको यहूदी, नसरानी या जिस मसलक पे, जिस अकीदे, जिस फिरके पे होते हैं उस पे कर देते हैं। होता क्या है कि जब बाहर का माहौल मवाफिक मिलता है ना, तो इल्हाम जो तकवा का है ना, ये उभरता है। जो बच्चे नेक माहौल में पैदा होते हैं, उलमाए कराम के बच्चे, हाफिज़े कुरान के बच्चे, जिनके घरों में नेकियों का माहौल है, जो हर वक्त दीन तबलीग दावत है, उनके घर से खैर उठती है, उन बच्चों के साथ हुआ सिर्फ ये कि जू ही अंदर से इल्हाम उठा कि उठो तकवा की रविश अख्तियार करो, बाहर के माहौल ने उसको सपोर्ट कर दिया, वो संभल गए। ऐसे जैसे एक पौधा ज़मीन से निकलता है ना, तो उसके इर्द गिर्द बहुत बाड़ बनी हो जो उसकी हिफाजत करे, वो पौधा बिल्कुल सीधा जाता है, कामयाब हो जाता है इंसान, कुछ मुश्किल नहीं करनी पड़ती। ऐसे लोग बाद में बड़े होकर क्या कहते हैं, हमने तो कभी गाना सुना ही नहीं। अब कहते हैं हाय माशाल्लाह आप कितने खुशकिस्मत हैं। फुलां कहता है हमने तो कभी कोई फिल्म देखी नहीं, गंदी फिल्म तो छोड़े, हमने तो अच्छी फिल्में भी नहीं देखी। आप कहते हैं वो आप तो बहुत ही खुश नसीब हैं। अभी देखते हैं कौन खुश नसीब है। ये एक केस हो गया, अंदर अच्छी बात थी, बाहर भी अच्छी मिल गई। अब दूसरी सूरत के कि अंदर से तो हर एक ही अच्छा था, लेकिन उठा तो घर में जो भी शैतानी काम हो सकता था वो हुआ। अब बचपन में 12 साल जब मैं बलूगत से पहले अल्लाह सुबहाना ताला ने क्यों नेकियां नहीं लिखी, बदियां नहीं लिखी, आज उसको समझ ले। नबी सल्लम ने फरमाया कि तीन किस्म के लोगों के अमल नहीं लिखे जाते, कलम उठा लिए गए, जिसमें एक चीज़ बच्चा भी है। वजह क्या है कि बच्चे में भी बाकी चीज़ें भर रही होती हैं, अभी वो सही चल नहीं रहा, बोल नहीं रहा, बात नहीं कर रहा। अब उस बच्चे के अंदर पूरी खैर है, हज़रत ईसा की तरह इन्नी अब्दुल्ला, हर बच्चा यही कहेगा मैं अल्लाह का बंदा हूँ। लेकिन अभी बाहर अब्दुल्ला कहने वाले लोग नहीं हैं, अभी उसके इर्द गिर्द जो लोग हैं वो तो खुद को खुदा कह रहे हैं, या वो नारा जो फिरौन ने लगाया था ना रब्बुकुम अलआला, वो हर बंदे का नफ्स भी लगा रहा होता है। वो कहता था ना रब्बुकुम अलआला, आज हम सबका नफ्स कहता है ना रब्बुकुम अलआला। अब होता क्या कि ऐसा बच्चा 12 साल की उम्र तक उसको रिलैक्सेशन दे दी जाती है, स्ट्रगल करो, अभी तुम कमज़ोर, अभी तुम माँ के हाथ में, बाप के। जो ही बच्चा बालिग होता है ना, जिस्मानी तब्दीलियाँ आती है ना, जिस समय बाल आ गए, आवाज़ बदल गई, और इसी तरह जो अंदर की कैफियत है ना, उसमें भी फिर उतार चढ़ाव आता है। आप फील करेंगे सबसे ज़्यादा मजहबी सवालात 8, 9, 10, 11, 12 साल की उम्र के बच्चे पूछते हैं। आप अपने बच्चों से पूछे, मैंने एक यंग बच्चे से पूछा कि आपके कोई क्वेश्चन है, तो उसने जितने मुझे सवाल लिखा है वो सारे इसी किस्म के थे। हम मुसलमान हैं तो वो काफिर क्यों है, वो ऐसे है तो हम ऐसे हैं, और अल्लाह ने हमें ऐसे क्यों बनाया और क्यों बनाया। तो मैंने सोचा कि इस उम्र में बलूगत बाहर हो रही है ना, तो अंदर सोच भी बालिग होती है। अब जब सोच बालिग होती है ना, तो उसके अंदर जो शऊर था ना तकवा का, अब उसको लिख रहा है कि बाहर तो हालात ठीक नहीं है, अब क्या करूं? अब अगर ऐसे वक्त में कोई ऐसा सपोर्टिव दोस्त मिल जाता है, कोई साथी मिल गया, कोई बहन, कोई शौहर, कोई घर वाला, जो उसको तकवा की तरफ ले जाए, तो वो माहौल के असर से निकल जाता है। फिर वो कहते हैं नहीं, ये सही दीन नहीं है। इस आयत को पढ़ना चाहते हैं ना, तो कन्वर्ट्स लोगों की कहानियां पढ़ें। बिल्कुल वो बताएंगे, मैं शुरू से ऐसे था, मुझे ये चीज़ शौक नहीं था, मैं इस चीज़ को देखती थी, मुझे अच्छा नहीं लगता था। यानी उनके दिल से ये बातें उठ रही होती हैं, लेकिन समझ नहीं आती किधर जाऊँ। मेरे पास एक आध कैसेट भी थी, बहुत पहले मैंने सुनी, बुक्स भी मौजूद हैं। एक कैसेट थी जिसका नाम था पीटर से अब्दुल्ला तक। तो वो पहले पीटर था, क्रिश्चियन था, प्रीस्ट का बेटा था, उसे अब्दुल्ला कैसे बना? यही जंग थी, फल हम हा फजू रहा व तकवाहा। बचपन से कहता है कि संडे को हमारा चर्च में जाने का मामूल था, मेरा बाप मुझे लेके जाता था। वो कहते मैं बड़ा होना शुरू हुआ ना, तो मेरे जहन में सवाल आते थे हज़रत ईसा के बारे में, और जब मैं अपने बाप से वो सवाल पूछता था तो गुस्सा करता था बाप, चुप करा देता था, चुप करके बैठ जाओ। मैंने कहा अच्छा, मैं खुद ही पढ़ता हूँ, तो मुझे कहता था हर किताब पढ़ लो, लेकिन तुमने ये मुसलमानों की किताब नहीं पढ़नी। कहते मैंने कहा क्यों? मेरा बाप मुझे बाकी चीज़ों से नहीं रोकता, इससे क्यों रोकता है? इसी से तजस्सुस पैदा हुआ, फिर अल्लाह ने कोई इसबाब पैदा किए, फिर उसने जो ठोकरें खाई, कभी आप सुने तो आंखें आंसुओं से भर जाती हैं। कहते कि मैं इस्लाम की तलाश में निकला था, लेकिन मुझे इस्लाम कबूल करने के बाद कई साल तक सही इस्लाम ही नहीं मिला। जिस मसलक के पास गया उन्होंने कहा मैं ही ठीक हूँ, जिस फिरके के पास गया उन्होंने कहा मेरा ही ठीक है। उसके बाद अल्लाह ने उसको फिर किसी कुरान और सुन्नत वाले से जोड़ दिया। आप देखिए, आपका दिल आपको बताएगा कि ये ठीक है। आप किसी भी मसलक, किसी फिरके, किसी गिरोह वाले के पास जाएं, आप अपनी फितरत में उभरते हुए सवाल पूछें, आपको जवाब नहीं देंगे ना, आप फील कर लेंगे कि समथिंग इज रॉन्ग। या तो लोग चुप करा देते हैं, या गुस्सा कर देते हैं, या फिर कुछ तावीलात कर देते हैं। हमेशा दुआ करें अल्लाहुम्मा अल्हिमनी रुश्दी, ये इल्हाम का लफ्ज़ उसमें आता है। अपने पास ये दुआ लिख के रख लें, चंद दिन पढ़ेंगे आपको याद हो जाएगी। दिन में 20 काम आप सोच रहे हैं ना करने के, क्या करूं ना करूं, ये यस नो, ये दुआ पढ़ लें अल्लाहुम्मा अल्हिमनी रुश्दी व इज़नी मिन शर्री नफ्सी। ए अल्लाह, मुझे अपनी तरफ से भलाई दे, रुश्दी मुझे हिदायत, रुश्द जैसे खुलफ़ाए राशिदीन का लफ्ज़ है, यानी क्या ठीक है, हिदायत का रास्ता क्या है, ये नफ़े का सौदा है, ये नुकसान, कह के अल्लाह ताला तुम मुझे वो रास्ता दिखा। वाइज़नी, और मुझे महफूज रख, किससे? मिन शर्री नफ्सी, मेरे नफ्स के शर से। हक और बातिल की जंग चल रही है ना अगर अंदर, कुरान पढ़ने से पहले एक और माहौल था, कुरान के बाद दूसरा, हम उस ख़ानदान में फिट ही नहीं हो पाते, हमारे आंसू ही नहीं ख़त्म होते, हम कहते हैं करें क्या, किसको नाराज़ करूँ, किसको खुश करूँ, ये दुआ पढ़े अल्लाहुम्मा अल्हिमनी रुश्दी। यही दुआ दिन में 17 बार इहदिनस्सिरातल मुस्तकीम की सूरत में की। जो बंदा लेन चेंज करने की पोजीशन में होता है ना, वो बहुत रिस्क में होता है, ख़तरा भी बहुत लगता है उसको, पीछे वाली गाड़ी टकरा जाएगी, इधर वाली टकरा जाएगी, ये होगा वोगा। ऐसे वक्तों में अल्लाह से खसूसी ताल्लुक़ रखें। कभी कोई आपके पास नॉन मुस्लिम आता है, कोई इंक्लाइंड है इस्लाम की तरफ, फोर्स ना करें, पुश ना करें, सोचने दें, उसकी फितरत को भारें। यहाँ मैं ये बात कर रही हूँ ना, तो मुझे सेल्समैनशिप का एक असूल याद आ रहा है, जो बहुत कारआमद है और बहुत कम लोग उसको जानते हैं, अमूमन जो लोग इतना ज़्यादा इन चीज़ों से इन्वॉल्व नहीं होते। मसलन एक गाहक है, वो किसी की दुकान पे आता है, वो क्या कहता है? जी मुझे कुछ दिखा है। अच्छा, गाहक कायल लेना है या देखने, जो खड़ा है सेल्समैन, उसने अपनी एफिशिएंसी दिखानी है कि उसको पता है आज मैंने जो बेच के जाना है, मैंने मालिक को खुश करना है या मैंने खुद पैसे कमाने हैं। ये देखें जी, ये देखें जी, ये देख, ये तो बहुत ही अच्छा है, ये तो बहुत अच्छा। अभी वो अभी पूरा नहीं देखा, एक और ला के आप उसको कपड़ा दिखाते हैं। अब वो सेल्समैन क्या कहेगा कि देखे मैंने तो आधी दुकान खोल के रख दी, सारी थान खोले मैं, फिर भी नहीं लेके गया, भला हुआ क्या? आपने उसको सोचने का मौका नहीं दिया। फल हमाहा फजू रहा व तकवाहा, बिल्कुल यही बात है। एक अच्छा सेल्समैन कौन होता है? किसी को एक चीज़ दिखाएं, आप पेन लेने आए, ये देखिए ये कैसा है, उसके हाथ में दे दें, वो देखे, अच्छा वो देख रहा ना, अपनी लफ्ज़ों में पॉजेस दे, 10 सेकंड बात करें तो 5 सेकंड चुप रहे, ये अच्छा है देखे, फिर आप कह सकते हैं इसकी नेप भी आप चेंज कर सकते हैं, फिर आप फील करें, फिर आप कहें कि देखें इसके यहाँ पैड भी लगा हुआ है, आप छुएंगे नहीं, फिर आप चुप करके अपना कुछ काम करें। बेहतरीन सेल्समैन पता क्या होते हैं? कि कस्टमर को चीज़ दिखा के आप बाकी चीज़ें ठीक करनी शुरू कर दें, और जो चीज़ आपको लग रहा है ना आपने बेचनी है, उसको उलटना पलटना शुरू कर दें। बाज़ दुकानदार हैं सिर्फ वो कपड़ा खोल खोल के तय करना शुरू कर देते हैं जो लोग देखते हैं। औरतों को देखे वो कपड़ा देख रही होती है ना, तो एकदम दुकानदार के हाथ में वो चीज़ या कोई दूसरे को दिखाता है तो कहते नहीं वो हमें दिखाइए, सच है झूठ है, ये जो बाजी ने बुंदा पहना ये दिखाएं। ये क्या होता है कि वो बंदा उस चीज़ को भार लेता है, सोचने का मौका नहीं। बात तो आप कोशिश करते हैं कुछ नहीं बिकता, और बाद लोग एक चीज़ दिखाते हैं उसके हाथ में दें, कान में लगाएं, रखें, अच्छा लग रहा है, सज रहा है, बहुत अच्छा है। मैंने इस लास्ट वीकेंड आप लोगों के साथ थोड़ी सी मैंने भी की है कुछ सेल्समैनशिप, ये लोग जानते हैं जो मोस किए हुए थे। मुझे उस वक्त लगा कि इस वक्त स्टेज पर बैठने का वक्त नहीं है, इनको ज़रूरत है। और ये सारे अनाड़ी लोग थे उस दिन, बिना बजी भी नहीं थी गई भी, और इतना रश पड़ा मुझे लगा इन्होंने फ्री कर दिया सोना। मुझे एक अमानत का ख्याल आया कि अल्लाह ये लोगों की मानते हैं, पता नहीं इनको हिसाब भी ठीक आता नहीं, ये सारा ऐसे ही ना कुड़ियों के मोल भेज भेज के चले गए। ख़त्म हो चुका था हमारा फंक्शन, ऑक्शन भी हो चुकी थी, एंड पे कह दिया टूट पड़ो, जिसको लेना है फ्लैट रेट पे करके कर लो, वट एवर। खैर मैं वहाँ से उठ के अपनी जगह पे आई, फिर मैंने देखा माशाल्लाह इन सब की एफिशिएंसियाँ देखी, बहुत खुश थे। ये देखे मैं गई तो सारा टेबल भरा हुआ था जेवर खुला हुआ, कांटा किधर पड़ा है वो जी, ये सारा इनको हमने दिखाया। ये खुश थे, ये मैं किसी की बुराई नहीं कर रही, क्योंकि आप कोई सेल्समैन तो हैं भी नहीं है सारे, लेकिन जिन्होंने अटमोस्ट कोशिश की, चीज़ें भी बिक रही थी, लोग भी थे। तो मेरे पास जो थी मैंने उनके कान में पूछा कि अभी बिका क्या है इन थोड़ी देर में, कहती भी बिका कुछ नहीं, वो लिख रही थी, दिखाया हुआ बहुत था। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ख्याल है कि ये कुछ साथी बीच में सारे चले भी गए थे, थोड़े से लोग रह गए थे इन पे मौसम में जब ये चीज़ें बिकी हैं। फिर आप बताएं इतना तेजी से बिका, ऐसे लगा कि जैसे मैदान का पानसा बदल गया। एक घंटा तकरीबन लग गया था हमें, उसके बाद तो यूं चीज़ें बिकी हैं, बड़ा सेट, दूसरा बड़ा सेट, चूड़ियाँ बिकी, ये बिका, अल्हम्दुलिल्लाह हमने सिर्फ उस दिन मौसम में तकरीबन 3 लाख का सोना बेचा। मैं आपको सिर्फ ये बता रही हूँ कि लोगों को डील करना सीखा है, मैंने खुद बेचे हैं बड़े सेट, दोनों तीनों मैंने ही बेचे हैं, सिर्फ एक दिखाया और वो ले के हटी है, और मैं बोली नहीं, मैंने मेहनत नहीं की, सिर्फ उनको ये एहसास हो गया कि ये जो ले रही है ये इनका फ़ायदा है। फलहमहा फजूरहा व तकवाहा, याद रखें आप एक दफ़ा लोगों को बता दें कि इस इस्लाम में आपकी खैर है, मेरा तब दिल चाहता है मैं नॉन मुस्लिम में जाऊँ, मैं उनसे बात करूँ, यकीन करें अंदर तड़प है इनके, सोचो उनकी आंखों में आंखें डालें, सोचो ये इल्हाम, ये तकवा, छोड़ो फजूर, क्या मिला गुनाह से, तुम्हें शराब ने क्या दिया, तुम्हें उसने क्या दिया, उसने कुछ नहीं दिया, आओ एक दफ़ा आओ नमाज़ पढ़ो मेरे साथ, छोड़ो कलमा बाद में पढ़ना, आओ तुम्हें वजू करना सिखाते हैं। एक किसी आलिम की मैंने बात बहुत पहले सुनी थी, वो कहते थे कि मैं इस तरह तबलीग करता हूँ, किसी दूसरे मुल्क में गए अपने इलाज के सिलसिले में, वहाँ सारे नॉन मुस्लिम्स थे, तो कहते हैं कि मैं वहाँ जाता हूँ तो दीन का तारुफ है, लोग वैसे ही मिलने बहुत आते हैं, तो वहाँ कोई नॉन मुस्लिम भी होते हैं ना, तो वो हमें ये बातें करते देखते हैं। मैं उनको कहता हूँ कि अच्छा तुम्हें भी कोई बात सुनाओ, तुम्हें राइम अच्छे लगते हैं, तो मैं उनको ना ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह इसको राइम में पढ़ाता हूँ ऐसे ही। अब लोग होते हैं ना जैसे वो लफ्ज़ों को सुन के खुश होते हैं, कहते वो कहते हैं ये तो बहुत मज़े का है, और आपको पता है कि ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ना कितना आसान है, मैं होंठ पूरे बंद भी रखूँगी ना तो मैं ये लफ्ज़ बोल सकती हूँ, आप भी करके देख लें, किसी को नहीं पास बैठे को पता कि आपने क्या पढ़ा। जब मोहम्मद कहते हैं तो होंठों के मखरज लगते हैं, बाकी सारे अंदर के दिल के मामले हैं। कहते कि वो पढ़ते हैं ना, फिर उसके बाद मैं उनको रोज़ कहता चलो भाई तुम 10 दफ़ा मिलके पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूल, कहते हैं आहिस्ता आहिस्ता मैं फील करने लगता हूँ कि उनके अंदर इस लफ्ज़ के असरात आते हैं। फिर मैंने कहता हूँ अच्छा तुम्हें पढ़ना तो बहुत अच्छा आ गया, तुम्हें समझ आया तुमने क्या कहा, नहीं समझ आया आओ मैं बताता हूँ, इस तरह मैं उसको आहिस्ता से ट्रैप करता हूँ और उनके दिल खुल जाते हैं। ये तड़प है, ये मैं इसको इस तरह बताते हुए महसूस कर रही हूँ कि आप खाना खाते हैं, किसी को पूछें खाना खाएंगे, नहीं खाना, भूख नहीं है, और वाकई भूख नहीं होती, सामने बैठ के खाना शुरू कर दें, खाने की खुशबू आएगी वो भी आपके साथ तोड़ेगा, आप देखें बातों ही बातों में वो भी खाने लग जाएगा। अब दीन ये नहीं रह गया कि हो मुसलमान डंडे के जोर पे होना पड़ेगा, नमाज पढ़नी पड़ेगी, नहीं, उसके इल्हाम को भरें, अंदर से खैर निकालें, और यकीन करें ये फितरत के ऊपर पर्दे पड़े हुए हैं, जो शराब और गुनाह और ड्रंक होके लोग अपने आप को ज़ाया करते हैं ना, मुझे तो जब कभी गुजरते हुए किसी पब के पास से गुजरना पड़ता है और लोग शराब के नशों में बैठे हुए और खाल से बेहाल, वो कोई ज़िंदगी, आप उनके मजहब से पूछें कि ये कोई अच्छा काम कर रहे हैं। हम कहते हैं इस्लाम ने शराब को हराम करार दिया, दुनिया के बाकी मजहब क्यों कहते हैं कि शराब बुरी है, क्योंकि फल हमहा फजूरहा, गुनाह हर एक को पता है गुनाह, जिना इस्लाम तो कहता है ये जिना बुरी चीज़ है, दूसरे क्यों इसको बुरा कहते हैं इसके बावजूद काबू नहीं कर पाते, फितरत में लिखा हुआ है कि जिना बुरी चीज़ है, शराब बुरी चीज़ है, सिगरेट पीना बुरी चीज़ है। तो जिस तरह एक इंसान के अंदर ये जंग लगी होती है ना, अगर बाहर के हालात अच्छे हों तो अल्लाह की ज़ात उसको बहुत ही ज़्यादा रास्ते दिखा देती है। अब होता क्या है कि जब हम कोई ऐसी चीज़ें पढ़ लेते हैं ना, कोई ऐसी चीज़ें, जैसे आजकल हम कुरान पढ़ते हैं, हम सब तो ईमान के साथ पढ़ रहे हैं ना। किसी बंदे को हमारी ज़ुबान आती हो, जिसका ईमान नहीं है उसको बिठा दें, ज़ुबान समझता है ना वो बैठा रहे। मिसाल है कोई उर्दू स्पीकिंग, कोई नॉन मुस्लिम है, कोई हिंदू है, कोई क्रिश्चियन है, हमारे अपने मुल्कों में भी होते हैं। यकीन करें कि बैठे बैठे रोज़ सुनते सुनते ज़रूर उनके दिलों से बुत या कुफर की मोहब्बत कम हो के इस्लाम की मोहब्बत आती जाएगी। इस तरह से इल्हाम होगा, उसके दिल के अंदर से वो चीज़ें निकल जाएंगी और उसको लगेगा कि वाकई मैंने एक नया जन्म लिया। कई कहानियाँ इसके बारे में। एक औरत थी तो वो मुसलमान हुई, तो उनका किस्सा पूछा गया क्या हुआ, तो कहने लगी कि मैं किसी बहुत बड़ी मुश्किल चीज़ में फंसी हुई थी, मुझे लगता था ये काम नहीं होगा और एकदम वो मेरा काम हो गया, मुझे नहीं पता क्या हुआ, मैं अपनी जगह से उठी, मैंने जाके सर अपना ज़मीन पर रख दिया, मेरे पास कोई तो। उसने कहा ये क्या किया तुमने, कहती मुझे नहीं पता, मेरे अंदर से ये जज्बा उठा था कि मैं जाके झुकूँ। कहा इस तरह तो मुसलमान करते हैं, अच्छा रिसर्च की तो मुसलमान हो गए। ये इल्हाम होता है, बहुत खुशी के वक्त में आपके अंदर एक तशक्कुर के जो जज्बात होते हैं ना, ये इल्हाम के होते हैं। गुनाह करते वक्त भी दिल के अंदर इंसान के ख़राबियों की बातें आती हैं, ये सारी अल्लाह की तरफ से होती हैं। और ये जो नेकी का इल्हाम होता है ना, फअल्हमहा, अल्लाह तो कह रहे हैं ना हम डालते हैं, लेकिन ये अल्लाह की तरफ से होता है और फरिश्तों की तरफ से होता है, जिनको मलाए आला कहते हैं, पीछे हम पढ़ चुके हैं। लेकिन दूसरा इल्हाम जो है ना फजूर का, ये शैतानों की तरफ से होता है और नफ्स की तरफ से होता है। अल्लाह सबको बताता है। यहाँ वो मिसाल फिर रख लें कि बिल्ली गोश्त का टुकड़ा जो आपसे चोरी खाती है वो वहाँ जाके खाती है जहाँ आप ना पहुँचे, और दूध डालेंगे तो आपके पाँव भी चाटेगी। फल हम फजूर रहा व तकवा, एक बिल्ली को पता है कि फजूर और तकवा क्या, तो इंसान को नहीं पता। वो मालिक के पाँव चाटे तो बंदा मालिक की नाफरमानी करे, ये नहीं हो सकता। शऊर मौजूद है, इसको ज़ाया नहीं करना चाहिए। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस आयत को पढ़ा, यानी फल हमहा फजूरहा व तकवाहा, फिर इसके बाद ये दुआ मांगी, अल्लाहुम्मा आती नफ्सी तकवाहा व ज़क्कीहा अंत खैरु मन ज़क्काहा अंत वलीयुहा व मौलाहा। ए अल्लाह, मेरे नफ्स को इसका तकवा अता फरमा और तू ही इसको पाक फरमा, और तू बेहतरीन पाक करने वाला है, तू ही इसका मालिक और मददगार है। आप सब भी मिलके पढ़ ले, अल्लाहुम्मा आती नफ्सी तकवाहा व ज़क्कीहा अंत खैरु मन ज़क्काहा अंत वलीयुहा व मौलाहा। बड़ी खूबसूरत दुआ है, इसको भी याद करें, ये मसनून दुआओं में आपको मिल जाएगी इंशाल्लाह। इसी तरह एक और दुआ हज़रत ज़ैद बिन अरकम से है कि अल्लाह के नबी मांगा करते थे, आप भी साथ मांग लीजिए, अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिनल अज्ज़ी वल्कस्ली वल्हर्मी वल्जुबनी वल्बुख्ली व अज़ाबिल क़ब्र। अल्लाहुम्मा आती नफ्सी तक्वाहा व ज़क्कीहा अंत खैरु मन ज़क्काहा अंत वलीयुहा व मौलाहा। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन क़ल्बिन لا يخشع ومن نفس لا تشبع وعلم لا ينفع ودعوة لا يستجاب لها। कहते हैं कि ना सिर्फ ये कि ये मांगते थे बल्कि आप हमें ये दुआ याद भी करवाते थे। और इसका तर्जमा क्या है, इलाही मैं तुझसे पनाह मांगता हूँ आजजी से, सुस्ती से, बुढ़ापे से, बुजदिली से, बुखल से और अजाब कब्र से। इलाही मेरे नफ्स को इसका तकवा अता फरमा, इसको पाक कर, तू बेहतरीन पाक करने वाला है, तू ही इसका मालिक और मददगार है। इलाही मैं तेरी पनाह मांगता हूँ ऐसे दिल से जिसमें खुशू ना हो, ऐसे नफ से जो सैर ना हो, ऐसे इल्म से जो नफ़ा ना दे, और ऐसी दुआ से जो मकबूल ना हो। तो ये दुआएं बहुत काम आती हैं। हिस्सुल मुस्लिम में भी नफ्स की शरारतों से बचने के लिए ये मौजूद है। तो दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला हमारे नफ्स में तकवा को इल्हाम करें, और फजूर के जो जज्बात शैतान से या हमारे नफ्स से उभरते हैं हम उसको दबाने वाले बने। अगर बाहर का माहौल साजगार होगा तो अंदर की इस जज्बे को तकवियत मिलेगी, लेकिन अगर बाहर माहौल ख़राब है तो बाहर वाला अंदर की खैर को भी दबा देता है और अच्छे भले लोग बुरे कामों में पड़ जाते हैं।